ॐ नमः सिद्धेश्वर। ॐ नमः सिद्धेश्वर। ॐ नमः सिद्धेश्वर। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सवसाहूणं। हन्ताय मज्जरहिया जाय जरामरणन्तपोरढा संसारलयातमहं जीर्णच्छिन्नाजिनं वन्दे। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जय धौला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चूनी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यति ऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। चतुर्थ पुस्तक जो उत्तर प्रकृति स्थिति विभक्ति में भुजगार आदि हम देख रहे हैं, उसमें एक जीव की अपेक्षा अंतर का प्रकरण चल रहा है और हम पृष्ठ संख्या 47 पर आ गए। 47 मार्गणाओं में हम देवों में देख रहे थे। 46 पृष्ठ से नीचे का पैराग्राफ वहां से पढ़ेंगे, देवों की बात देवों में देख रहे थे ना कल। 46 पेज पर नीचे का पैराग्राफ वहां से शुरू करते हैं। देवों में मिथ्यात्व 12 कषाय और 9-9 कषायों की भुजगार और अवस्थित स्थिति विभक्ति का जघन्य अंतर एक समय। भुजगार का अंतर यानी जब एक समय के लिए अल्पतर होगा, अवस्थित एक समय वो लगातार एक समय के लिए अवस्थित रहेगा, लगातार अंतर्मूर्त रहेगा। हाँ, तो अवस्थित का भी अंतर एक समय बताया और भुजगार का भी एक समय बताया। हो भी सकता है अवस्थित का भी एक समय और उत्कृष्ट अंतर साधिक 18 सागर है, यानी आयु के शुरू में लेना फिर अंत में लेना उसको साधिक 18 सागर। इसके ऊपर के देवों की बात इसलिए नहीं लिखी, वहां तो लगातार अल्पतर वाला ही भंग होता है। मिथ्या दृष्टि तो ग्रैवेक तक है, परंतु ऊपर शुक्ल लेशा के कारण लगातार अल्पतर भंग ही होता है। तो एक बार भुजगार होने के बाद दोबारा भुजगार हो तो शुरू में हुआ, फिर आयु के अंत में हुआ। या शुरू में हुआ था भुजगार अधिक बंद करके, बाद में सम्यक दर्शन हुआ, फिर अंत में जाके मिथ्या दृष्टि हुआ और फिर भुजगार किया, ऐसे ले सकते उसमें। मिथ्या तो 12 कषायों के बारे में और अल्पतर स्थिति विभक्ति का अंतर ओघ के समान है। अल्पतर मने हमने हमेशा देखा एक समय या अंतर मुहूर्त तक होता है। अल्पतर का अंतर यानी एक समय के लिए भुजगार या अवस्थित हो जाएगा, भुजगार हो जाएगा तो एक समय का अंतर होगा, और लगातार उतना ही बंद अंतर मुहूर्त तक होता रहेगा तो अंतर मुहूर्त अंतर हो जाएगा। अनंतानुबंधी चतुष्क की अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य अंतर एक समय है। जैसे अन्य कषायों में देखते हैं अल्पतर का अंतर का अर्थ क्या है, एक समय के लिए भुजगार किया वापस अल्पतर किया तो उसको एक समय का अंतर होगा, और उसका उत्कृष्ट अंतर कितना होगा, अल्पतर का उत्कृष्ट अंतर। हाँ, तो ऐसा जीव लेना कि पहले तो अल्पतर करके उसने विसंयोजना पूरी कर दी और उसका सत्ता में ही नहीं है, यानी अल्पतर का अंतर चालू हो जाएगा, फिर अंत में जाकर उसने देवों की बात है तो 31 सागर वाला लेना है, अंत में फिर उसने मिथ्या दृष्टि हो गया है तो संयोजना की है, तो पहले समय तो अवक्तव्य कहलाएगा, और फिर बाद में, क्योंकि वो 31 सागर वाला है, वो अल्पतर ही चलेगा उसका। वैसे ही अवक्तव्य का जघन्य अंतर कितना होता है, अंतर्मूर्त, क्योंकि अवक्तव्य कब होता है, जब सत्ता में नहीं था और सत्ता प्राप्त की, यानी विषय योजन वाला जीव मिथ्यात्व में आता है तो उसकी सत्ता प्राप्त होती है तो अवक्तव्य कहलाता है। दोबारा वो मिथ्यात्व में से फिर सम्यक तो प्राप्त करेगा, फिर विषय योजना करेगा और दोबारा मिथ्यात्व में आएगा, तो दूसरी टाइम अवक्तव्य होगा। इसके लिए जघन्य अंतर्मूर्त तो लगेगा ही काल। अवक्तव्य वाले का अंतर एक समय घटित नहीं होगा, मिनिमम एक अंतर्मूर्त, और अधिक से अधिक, जैसे हमने अभी अल्पतर में देखा था, तो कुछ कम 31 साल। अब 47, यहाँ तो ये हमने कल की बात पढ़ी। शेष स्थिति विभक्तियों का भंग मिथ्यात्व के समान है, यानी अनंतानुबंधी के शेष स्थिति विभक्ति। कौन सी शेष? एक हमने अल्पतर देखी, अवक्तव्य देखी। भुजगार और अवस्थित है, वो मिथ्यात्व के समान है, उसका अर्थ होता है जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर, हाँ, साधिक 18 साल। अभी देवों में ही सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की, भुजगार स्थिति विभक्ति का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त। हमेशा ये समझना, सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व का भुजगार कब हो सकता है, तो सम्यक्त्व प्राप्ति के पहले समय में, और अवस्थित भी तभी हो सकता है, तो उसका अंतर घटित करना है। तो जघन्य अंतर अंतर्मूर्त होगा, एक बार समय को प्राप्त किया है, फिर मिथ्यात्व में आया, फिर दोबारा समय को प्राप्त किया।
दो बार वेदक करेगा उसको?
हाँ, दो बार वेदक होगा। पहली बार उपशम भी ले सकते हैं हम,
वहाँ पे अवक्तव्य हो जाएगा, पीछे तो अल्पतर ही होगा, तो भुजगार होगा ही।
पहले समय में अवक्तव्य नहीं, पूरी उद्वेलना नहीं करना ना, उद्वेलना करते करते उसने स्थिति कम थी, वो हो सकता है ना। देखो उपशम फिर दोबारा कब होता है, कि जो दो की स्थिति है वो करीबन सागर के करीब इतनी हो गई या उससे थोड़ी कम हो गई, तो वहां दोबारा उसको तीनों ही प्रकृतियों का उपशम कर सकता है, दर्शन मोहिनी की तीनों को एक साथ उपशमित करके सम्यक तो प्राप्त करेगा। उस समय पोजीशन क्या है, मिथ्यात्व की तो ज्यादा है, उपशम सम्यक तो प्राप्त कर रहा है ना, तो मिथ्यात्व के प्रायोगिक लब्धि में उसने स्थिति कांडक घात के द्वारा मिथ्यात्व की तो अंत कोड़ा कोड़ी की है, और इन दो प्रकृतियों की जितनी उसने उद्वेलना करते करते सागर के करीब इतनी घटाई थी, जिसके लिए उसको पल्ले का असंख्या तो भाग काल में उतनी इसकी घटाई थी, अंत कोड़ा कोड़ी थी जब मिथ्यात्व में आया था, अंत कोड़ा कोड़ी से घटाते घटाते सागर जितनी बाकी रही। अब ये दोबारा इस पोजीशन पर आकर ये यहाँ तीनों का ही उपशम, यानी अनंतानुबंधी चार और ये तीनों का एक साथ उपशम कर सकता है, उपशम योग्य काल लगेगा। तो अभी उसको सम्यक तो प्राप्त हुआ, यानी ये नीचे के चला जाए और यहाँ सम्यक तो की प्राप्ति हुई, तो क्या हुआ, ये मिथ्यात्व में से इतनी ये सारी प्रकृति इतनी तैयार हो जाएगी, फिर तो वहां भी भुजगार हो सकता है। तो दूसरी टाइम में जो लेना है अंतर्मूर्त में, उसको वेदक लेना, यानी भुजगार वो वेदक सम्यक तो में भी हो सकता है, और साधी मिथ्या दृष्टि जब औपशमिक करता है तब उसके भी हो सकता है। अनादि वाला होगा उसको अवक्तव्य होगा, या जिसने उद्वेलना पूरी कर दी है उसके लिए भी अवक्तव्य होगा। डिफरेंस ख्याल में है नहीं? हाँ, अभी आ गया। अब सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर का अंतर चाहिए। अल्पतर का अंतर एक समय, जघन्य अंतर एक समय, ये अल्पतर का कब घटित होगा, वो भी सम्यक्त्व प्राप्ति के पहले समय में, मिथ्यात्व की और उसकी स्थिति में जो कोई डिफरेंस है तो वहाँ एक समय के लिए अल्पतर हो सकता है।
या फिर एक समय के लिए अवस्थित लेना है ना, फिर बुजागर भी ले सकते हैं।
हाँ, पहले अल्पतर कर रहा था मिथ्यात्व में, आपका प्रश्न ऐसा है ना, एक समय के लिए क्या लेना, अल्पतर लेना है कि भुजगार लेना है?
नहीं, अवस्थित या भुजगार।
देखो, पहले मिथ्यात्व में उद्वेलना कर रहा था तो अल्पतर हो रहा था, फिर उसने एक समय के लिए भुजगार किया या अवस्थित किया, और फिर जब समय तो प्राप्त होता है तो अल्पतर ही होता है, तो अल्पतर में एक समय का अंतर पड़ गया, ये तो जघन्य अंतर। उत्कृष्ट अंतर कैसे घटित करेंगे? हाँ? ऐसा लेना है कि उद्वेलना करते करते सत्ता समाप्त हुई, अल्पतर करके उसने उद्वेलना समाप्त कर दी, अभी अल्पतर का अंतर चालू हो गया। अब देवों में लेना है तो लंबी आयु लेना है, और आयु के अंत में सम्यक तो प्राप्त करेगा, यानी वहां तो अवक्तव्य होगा, और फिर दूसरे समय से अल्पतर चालू हो जाएगा,
कुछ कम इकतीस,
तो इतना सारा उसका अंतर घटित होगा। अभी यहाँ पढ़ेंगे हम, तो यहाँ पहले दोगुनों का जघन्य अंतर बता रहे कि अल्पतर का जघन्य अंतर एक समय है, और अवक्तव्य स्थिति विभक्ति का जघन्य अंतर पल्ल्योपम के असंख्यात भाग प्रमाण है। अवक्तव्य कब होता है? उद्वेलना पूर्ण होने के बाद जब सम्यक तो होगा तब अवक्तव्य होगा। अब दूसरी बार उसको पूर्ण उद्वेलना, यानी अभी सम्यक दृष्टि हुआ है, फिर मिथ्यात्व में जाएगा, फिर उद्वेलना पूरी करेगा और दोबारा जाके सम्यक तो प्राप्त करेगा, तो मिनिमम पॉसिबल अंतर कितना है? तो पल्ल्य के असंख्यात भाग अवक्तव्य के लिए। तथा सभी का उत्कृष्ट अंतर, भुजगार का हो या अवस्थित का या अल्पतर का या अवक्तव्य का, कुछ कम 31 सागर है। जैसे अवक्तव्य भी हमने देखा था कि अवक्तव्य कब होगा,
उद्वेलना करते करते 31
देवों में अवक्तव्य है, नहीं देवों में अवक्तव्य लेना है।
तो 31 सागर वाली स्थिति में है, और जो उद्वेलना करता तो उसका
लाभ, पर पहली बार एक बार अवक्तव्य कराना चाहिए ना, यानी जो उद्वेलना पूरी है, अनादि मिथ्या दृष्टि हो या सादी, जिसने उद्वेलना पूरी की है वो अभी 31 सागर वाले देव में उत्पन्न हुआ, और अंतर्मुर्त के बाद उसने सम्यक्त्व की प्राप्ति कर दी तो सत्ता में आया, यानी औपशमिक होगा उसको, तो उसके अवक्तव्य हो जाएगा। फिर बाद में मिथ्यात्व में जाएगा, पल्ले के असंख्यात भाग काल में उद्वेलना पूरी की, आयु के अंत में जाकर फिर दोबारा सम्यक्त्व प्राप्त करेगा, तो उसके अवक्तव्य कहलाएगा।
ये एक बार की उद्वेलना हो जाएगी पूरी, पल्लेटे असंख्यात में बात तो 31 सागर छोटा काल है।
आपका ऐसा प्रश्न है, 31 सागर छोटा काल है और पल्ले का असंख्यात भाग बड़ा है, क्या ऐसा है? बोलो प्रेरणा भी। 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर होता है,
अच्छा होता है।
और पल्ले का असंख्यात भाग तो सागर का असंख्यात भाग है, ये सागर के असंख्यात भाग का भी 10 कोड़ा कोड़ी वा भाग। अच्छा, ऐसा प्रश्न पूछा तो क्लैरिटी हो जाती है ना, सागर क्या है और पल्ले क्या है। सागर के सामने पल्ले छोटी फिगर है, और उसका भी असंख्यात भाग, यानी अकेले 31 सागर में ही कितनी बार सम्यक तो प्राप्त करके उद्वेलना पूरी होके फिर सम्यक तो प्राप्त कर सकता है। एक पल्ले में असंख्यात, उसका असंख्यात भाग है ना। पल्ले के असंख्यात भाग में असंख्यात अबज वर्ष होते, ऐसे जो हम कहते, वो असंख्यात का प्रमाण बहुत बड़ा है ना। असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी नहीं जाएगी, क्योंकि एक उत्सर्पिणी अवसर्पिणी 20 कोड़ा कोड़ी सागर की है, और यहाँ तो पल्ले का असंख्यात भाग है, वो अंगुल के असंख्यात भाग में है दिखा था। हाँ, अंगुल के, क्योंकि पल्ले से अंगुल बहुत बड़ी संख्या है। पल्ले और अंगुल, अंगुल बहुत बड़ी फिगर है। जितने वर्ग स्थान जाने पर पल्ले आता है। वर्ग स्थान का अर्थ क्या है? दो के वर्ग से शुरू करते, चार, सोलह, दो सौ छप्पन, पनट्टी, पैंसठ हजार पांच सौ छत्तीस, ये चौथा स्थान हुआ। ऐसे पल्ले के लिए कितने स्थान जाने पड़ते? तो असंख्यात स्थान। तो जितने मान लेते एक स्थान पर पल्ले है, तो उसके पल्ले का वर्ग, उसका वर्ग, उसका वर्ग, उसका वर्ग, उतने ही असंख्यात स्थान आगे चले जाओ तो जाके अंगुल आता है। नहीं, आवली के लिए संख्यात स्थान जाएंगे, पल्ले के लिए तो असंख्यात स्थान जाने पड़ेंगे। देखो तो सभी का उत्कृष्ट अंतर कुछ है। अमी 31 अवस्थित स्थिति विभक्ति का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, क्योंकि अवस्थित स्थिति विभक्ति हम कब देखते हैं? 28 की सत्ता वाला जो वेदक सम्यक तो प्राप्त करता है उसके पहले समय में अवस्थित हो सकता है। मिथ्यात्व की और उसकी कितनी पोजीशन है, कितने निषेक है, उस पर निर्भर है। और उत्कृष्ट अंतर साधिक 18 सागर है। साधिक 18 ही क्यों लिया, यहाँ 31 वाला क्यों नहीं लिया? हाँ, 31 में तो अल्पतर होता चला जाता है, इसलिए भवनवासियों से लेकर सहस्रार स्वर्ग तक के देवों के इसी प्रकार जानना चाहिए।
इसे 31 सागर में जो पहले जिसने अच्छा हो, पहले सम्यक तो प्राप्त किया और पीछे उसने वेदक सम्यक तो नहीं, 28 के सत्ता वाला आया
एक बार अवस्थित भी,
हाँ, और उसने सभ्यत्व तो प्राप्त किया, उसके अवस्थित हो गया,
अवस्थित हो गया,
हाँ। और पीछे उसने उद्वेलना करके निकाल दिया, वापस सभ्यत्व तो प्राप्त। अच्छा, तो 31 अगर में घटित नहीं हो सकेगा,
नहीं,
वहाँ पे सभ्यत्व तो प्राप्त किया, वापस वो 28 के सत्ता वाला मिथ्या दृष्टि हो गया, वापस
देखो अवस्थित कब होता है उसको पहले देखेंगे। सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व का अवस्थित कब है?
एक समय वाला निषेक ज्यादा रहता है,
हाँ, उसमें मिथ्यात्व में एक निषेक ज्यादा है, और वो सम्यक तो प्राप्त करता है, तो दोनों की स्थिति समान हो जाती है, है ना? देखो निकालो ये, हम ओघ में देखो, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के अवस्थित का मिला क्या? ट्वेंटी फोर
नहीं, अंतरानुगम तो इधर ही होगा ना।
चौवालीस की दूसरी, हाँ, नहीं नहीं अल्पतर का उत्कृष्ट अंतर, वहाँ तो कुछ कम अर्ध पुद्गल बता दिया है।
नहीं, हम लोग अवस्थित की देख रहे थे ना, उत्कृष्ट अंतर,
हाँ हाँ,
अवस्थित का देख रहे,
विशेषार्थ में देखना अवस्थित का अंतर। वहाँ तो अर्ध पुद्गल परावर्तन लिखा है, अब नारकियों में देखेंगे। नारकियों में तो उसको भी लिया कि 33 सागर वाले में,
हाँ, तो यहाँ पे भी 31 सागर घटित होना चाहिए।
नहीं देखो, अवस्थित जो है ना, अवस्थित कब होता है कि मिथ्यात्व की एक स्थिति ज्यादा है, सम्यक्त्व की कम है।
सम्यक्त्व की एक स्थिति ज्यादा है और मिथ्यात्व से वो वापस स्ववेदक होता
है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। सम्यक्त्व की ज्यादा है तो सम्यक्त्व में से सम्यक्त्व मिथ्यात्व में से सम्यक्त्व प्राप्त होगा,
प्राप्त करेगा, तभी सम्यक्त्व की एक ज्यादा होगी तो दूसरे समय में, अच्छा,
वो तो एक गलेगी भी ना उसकी, तो जितनी मिथ्यात्व में उतनी रहेगी, नहीं समझे? देखो अवस्थित कैसे घटित किया था उसको पहले देख लो, वही 24 पे पृष्ठ पर। वहाँ काल कितना है वो बताया था, फिर वो काल एक समय होता है उसमें कैसे कैसे होता है उसको देखेंगे। देखो नीचे लिखा है ना, 24 पृष्ठ पर नीचे 46 नंबर का पॉइंट, तो उसमें भुजगार अवस्थित और अवक्तव्य वाले का काल कितना है तो एक समय बताया था, तो उसका खुलासा, जिसने पहले सम्यक तो सत्कर्म को उत्पन्न कर लिया है, यानी 28 की सत्ता वाला लेना, ऐसा कोई एक मिथ्या दृष्टि जीव जब सम्यक तो सत्कर्म के ऊपर दो समय अधिक इत्यादि रूप से मिथ्यात्व की स्थिति बांधकर सम्यक्त्व को ग्रहण करता है, ये तो भुजगार की बात है, क्योंकि सम्यक्त्व से मिथ्यात्व की स्थिति बहुत ज्यादा थी, और जब उसने सम्यक्त्व प्राप्त किया तो जितनी मिथ्यात्व की उतनी हो गई, तो भुजगार हो गया। अब आगे पढ़ेंगे। तथा एक समय अधिक मिथ्यात्व की स्थिति को बांधकर जिसने सम्यक्त्व को ग्रहण किया है, उसके सम्यक्त्व के ग्रहण करने के पहले समय में सम्यक्त्व की अवस्थित विभक्ति का काल एक समय प्राप्त होता है, बाद में तो अल्पतर हो जाती है। ये तो अवस्थित वाला है, मिथ्यात्व में एक ही समय ज्यादा था। अब यहाँ हमें ऐसा जीव लेना है
क्योंकि 31 सागर वाला भी उत्पन्न हुआ, सम्यक तो प्राप्त किया और मिथ्यात्व में गया, अंतकोड़ा कोड़िए अंतर्भूत तक उसकी स्थिति इतनी बदलेगी, तो तभी वहाँ पे जो वेदक हो सकता है तो उसकी
नहीं नहीं, पर पहले यहाँ यहाँ क्या लिखा है, ऊपर क्या लिखा है, उपकस 1800 सागरों में सादिर, यानी तो ये लिखने का प्रयोजन तो कुछ है ना वहाँ पर, हम उसका अर्थ नहीं लगा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर फिर अवस्थित करने के लिए नीचे का पढ़ेंगे तो उसका अर्थ ख्याल में आ जाएगा। देखो ये तो देखा ना हमने, सहस्रार तक के ये अवस्थित का दोबारा अवस्थित हो सकता है उसमें, तो अंतर घटित होता है अवस्थित का, ये आगे पढ़ेंगे फिर ख्याल में आ जाएगा, मैं बताऊंगी फिर। साधिक क्या है, वहाँ की आयु साधिक 18 सागर हो सकती है, हाँ, क्योंकि जिसने पहले अधिक आयु बांधी है बाद में घातायुष्क हुआ है, घातायुष्क के परिणामों के कारण उसकी घट गई, तो नीचे के स्वर्गों के थोड़ी ज्यादा हो जाती है, जैसे किसी ने ऊपर के स्वर्गों की बांधी और फिर वो सौधर्म ईशान में जन्म लिया तो आधा सागर तक ज्यादा होती है उसकी, ऐसे घातायुष्क की कहाँ तक हो सकती है, तो ये सहस्रार तक होती है, ऊपर के जो है वो वहां घातायुष्क नहीं उत्पन्न होते, इसलिए साधिक 18 लिया उसने। भवनवासियों से लेकर, हम पढ़ेंगे फिर आगे जब वहां उसका एक्सप्लेनेशन आएगा, भवनवासियों से लेकर सहस्रार स्वर्ग तक के देवों के इसी प्रकार जानना चाहिए। देखो सहस्रार तक के देव लिए ना, किंतु इतनी विशेषता है, कुछ कम अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए। अनंत कल्प से लेकर उपरिम ग्रेवेक तक के देवों में मिथ्यात्व 12 कषाय और 9 कषायों की अल्पतर स्थिति विभक्ति का अंतर नहीं है, क्योंकि अल्पतर होने के वो लगातार अल्पतर ही होता है, उसमें अंतर पड़ने का कोई चांस नहीं है। सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की भुजगार स्थिति विभक्ति का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य अंतर एक समय है और अवक्तव्य स्थिति विभक्ति का जघन्य अंतर पल्ल्योपम के असंख्यात विभाग प्रमाण है तथा ये ख्याल में आ रहे हैं।
अल्पतर का एक समय कैसे व्यतीत होगा?
अल्पतर का इन्हें पहले उद्वेलना कर रहा था, भुजगार तो वहां हो सकता है ना, तो बीच में एक समय के लिए भुजगार हुआ सम्यक्त के पहले समय में, तो फिर अल्पतर चालू हो गया, ये उसका जघन्य अंतर। और अवक्तव्य स्थिति विभक्ति का जघन्य अंतर पल्ल्योपम के असंख्यात विभाग प्रमाण है तथा अनंतानुबंधी चतुष्क की अल्पतर और अवक्तव्य स्थिति विभक्तियों का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, यानी विषय योजना की है उसकी अपेक्षा से अल्पतर का भी अंतर और अवक्तव्य का अंतर लेना तथा सभी का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है, इसी प्रकार शुक्ल लेशा में जानना चाहिए। यहाँ भी अवस्थित वाला लिया ही नहीं है, यानी अवस्थित वाला यहाँ नहीं होगा।
हमने आगे देखा था कि शुक्ल लेशा में वो मिथ्यात्व में जाएगा तो भी बंद कम ही करेगा, पहले हमने देखा।
हाँ, बंद कम ही करेगा
तो अवस्थित होगा।
तो यहाँ जितना बराबर है, जितना मिथ्यात्व में गया जाने के बाद वहाँ अधिक बंध नहीं करेगा, यानी मिथ्यात्व में आया है ना, तो जब मिथ्यात्व में आया है तो तीनों की स्थिति समान है और एक उदय रूप है, अब ये सम्यक दृष्टि हो जाएगा।
नहीं, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि होता है ना, तो भी उसकी स्थिति तो कम ही बनती है।
वही तो, जितनी है उससे कम बंधेगी, उससे कम बंधेगी नहीं, यहाँ ऊपर ज्यादा होने का सवाल नहीं है। ऊपर एक समय ज्यादा था तभी उसका अवस्थित बन सकता था, यानी यहाँ अवस्थित होगा ही नहीं। स्वामी तो निकालो,
नहीं देख
उसमें अवस्थित है क्या, नहीं देख लो। हमने तो काल देखा था ना, काल के भी पहले, अभी 24 के भी पहले हो जाएगा। मिथ्यात्व को मिल गया मेरा 19 पेज के आसपास, अनंतानुबंधी भी मिल गया, सम्यक तो सम्यक था। ये कितना काल है, वो 24 वाला है ना, हमको स्वामी चाहिए। मिल गया क्या 12 में है? नहीं, वो उसका डायरेक्ट यही पढ़ना ना। सात पृष्ठ पर है, सात पृष्ठ पर नीचे का पैराग्राफ। यहाँ पूछा था अवस्थित स्थिति विभक्ति का स्वामी कौन है, सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित स्थिति विभक्ति का स्वामी कौन है, उसका नीचे हम खुलासा पढ़ेंगे। यानी उसमें पहले सूत्र में ये बताया कि जहाँ मिथ्यात्व की स्थिति एक समय ज्यादा है सम्यक्त की स्थिति से, वो जब सम्यक्त प्राप्त करता है तब उसके दोनों की समान होती है, अवस्थित होती है, उसका खुलासा नीचे। जिस मिथ्या दृष्टि जीव के सत्ता में विद्यमान मिथ्यात्व की स्थिति सत्ता में विद्यमान सम्यक्त की स्थिति से एक समय अधिक है, वह जीव दूसरे समय में सम्यक्त को ग्रहण करता है, तब उसके सम्यक्त के ग्रहण करने के प्रथम समय में ही मिथ्यात्व की एक समय अधिक स्थिति सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व रूप से संक्रांत हो जाती है, अतः उसके सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित विभक्ति होती है। अभी इसी में
ये 13 पुष्प नीचे
आनत में देखो, 12 में नीचे वहाँ सम्यक अवस्थित भी होनी चाहिए, ऐसा लिखा था शंका। 12 पृष्ठ पर अंतिम लाइन में शंका, सम्यक आनत कल्प में से बात चल रही है, आनत और उपरी ग्रवेक तक। तो सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व में अवस्थितपना कैसे प्राप्त होता है, तो वहां लिखते हैं सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना करने वाले जिसने मिथ्यात्व की स्थिति सत्व से सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के स्थिति सत्व को कम कर दिया है, उद्वेलना करने वाले ने, जो सम्यक दर्शन के सम्मुख है और जिसने मिथ्यात्व के अंतिम स्थिति कांडक का घात करके मिथ्यात्व के स्थिति सत्व को सम्यक्त्व के स्थिति सत्व से एक समय अधिक किया है, ऐसे मिथ्यादृष्टि जीव के वेदक सम्यक्त्व को ग्रहण करने पर सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित स्थिति विभक्ति होती है, क्योंकि यहाँ पर काल की प्रधानता है। परंतु यहाँ अंतर घटित करना है ना, भले यहाँ स्वामित्व भी घटित किया है तो दोबारा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अधिक फिर मिथ्यात्व को बांधने का सवाल नहीं, जितनी है उससे कम ही बंधेगी।
ये लास्ट पैराग्राफ में उसका अधिक खुलासा है, 13 पृष्ठ पे।
हाँ, 13 पृष्ठ पर लास्ट पैराग्राफ, वहाँ ऐसा भी पूछा था ना कि उसमें विरोध नहीं आएगा क्या, तो विशेषार्थ में देखते देखो, आनतादिक में सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व के अवस्थित के बिना 3 पद होते हैं, ये लिख दिया उन्होंने। और अवस्थित सहित 4 पद होते हैं, मैंने दोनों ही मतों को स्वीकार किया। इस प्रकार यहाँ वीरसेन स्वामी ने 2 मतों का उल्लेख किया है। पहला मत प्राचीन उच्चारणा का है और दूसरा मत उस उच्चारणा का है जिसका वीरसेन स्वामी ने सर्वत्र उपयोग किया है। यहाँ पर वीरसेन स्वामी ने पहले मत के समर्थन या निषेध में तो कुछ भी नहीं लिखा, दूसरे मत का उन्होंने अवश्य समर्थन किया है। पहले तो उन्होंने बताया कि यह लेखकों की भूल नहीं है, क्योंकि यदि भूल होती तो एक ही जगह पर होगी, है ना। अब उसी के तीसरी लाइन में देखते आगे कि आनतादि में सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना द्वारा मिथ्यात्व से कम स्थिति कर ली है जिसने, वह जब सम्यक्त्व के सन्मुख होता है तब मिथ्यात्व के अंतिम स्थिति कंड के पतन द्वारा, ये जो अभी हमने पढ़ा था मूल में वही फिर यहाँ विशेषार्थ में बताते हैं, यानी उद्वेलना करते करते आया है और उसी समय विशुद्धि के द्वारा मिथ्यात्व का स्थिति खंडन हुआ है और उसकी स्थिति यहाँ पर एक समय अधिक रखी उसने। तो ये काल की प्रधानता से ये बन सकता है और निषेक की प्रधानता से नहीं बनेगा। अब हम आते अपने मूल प्रश्न पर, यानी यहाँ नहीं बनता ये बात लेके ये यहाँ कथन हुआ है, आनतादि में अवस्थित नहीं बनती, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित स्थिति विभक्ति नहीं बनती। आनतादि में सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित नहीं बनती, इसलिए उसका अंतर भी घटित नहीं होगा। आगे अभी हमने पढ़ा ना, आनत से लेकर अभी हमने पढ़ा था, इसी प्रकार शुक्ल लेशा में जानना चाहिए, वहां तक तो हमने पढ़ लिया। अब अनुदिश की बात करेंगे, 85 नंबर का पैराग्राफ। अनुदिश से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में सब प्रकृतियों की अल्पतर स्थिति विभक्ति का अंतर नहीं है, सब प्रकृतियों का अल्पतर ही होता है, परंतु अंतर कब होगा, बीच में भुजगार हो जाता अवस्थित होता तो अंतर कहने का प्रसंग आता। इसी प्रकार आहारक का योगी, आहारक मिश्र का योगी, अपगत वेद वाले, अकषायी, अभिनिबोधिक ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनपरे ज्ञानी, संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहार विशुद्धि संयत, सूक्ष्म सांप्रायिक संयत, यथाख्यात संयत, संयता संयत, अवधिदर्शनी, सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक दृष्टि, उपशम सम्यक दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों के जानना चाहिए, क्योंकि इन सब में अल्पतर ही होता है। ये सासाधन और सम्यक मिथ्यात्व में भी
सासाधन में अवक्तव्य होगा,
सासाधन में
पर उसका
अवक्तव्य तो सासाधन पहले समय में होगा। सासाधन की अपेक्षा लेंगे तो वो है ही। जिस मार्गणा में सासाधन भी होता है, पंचेंद्रिय मार्गणा है, तो उसमें जीव सम्यक्तों में से सासाधन में आ गया है तो उसको अवक्तव्य कहेंगे। पर अकेले सासाधन इतनी हमने मार्गणा देखी तो सासाधन कहते वहां अनंतानुबंधी है ही, उसमें अवक्तव्य नहीं होगा। पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय पर्याप्त, त्रस और त्रस पर्याप्त जीवों में मिथ्यात्व 12 कषाय और 9 कषायों का भंग ओघ के समान है। अनंतानुबंधी चतुष्क का भंग ओघ के समान है, क्योंकि जो पंचेंद्रियों में घटित होता है वो वहां भी, यानी जो ओघ में घटित होता है ना, पंचेंद्रियों की अपेक्षा ही घटित हो सकता है। किंतु इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य स्थिति विभक्ति का जघन्य अंतर, अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अपनी स्थिति प्रमाण है। हमने अवक्तव्य का, अनंतानुबंधी के अवक्तव्य का उत्कृष्ट अंतर ओघ में कितना देखा था। देखो कैसा घटित करना है। एक बार सम्यक तो प्राप्त किया, विसंयोजना की है, मिथ्यात्व में आया है और फिर अवक्तव्य हो गया। अब लंबे काल तक उसको मिथ्यात्व में ही घुमाओ, अर्धपुद्गल परावर्तन में कुछ कम। क्यों? क्योंकि वहां सम्यक तो प्राप्त करेगा, विसंयोजना करेगा, फिर मिथ्यात्व में आएगा, अवक्तव्य करके फिर सम्यक तो प्राप्त करके आगे जाके संयम क्षपणा सब करेगा अर्धपुद्गल किसमें। हाँ, अभी यहाँ की बात है ना, तो यहाँ पंचेंद्रिय रहना चाहिए, तो पंचेंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति लेना, उसमें संगी भी आए, असंगी भी आए, पर्याप्त भी है, अपर्याप्त भी है। हाँ, 2000 सागर वो त्रस की है, 1000 सागर होगी ना।
हाँ, 2000 सागर और त्रस
पंचेंद्रियों की। देखो त्रस की 2000 सागर है, साधिक त्रस और त्रस पर्याप्त की 2000 सागर, त्रस पर्याप्त की। हाँ, पंचेंद्रिय ना जनरल पूर्व, यानी साधिक 1000 सागर और पंचेंद्रिय पर्याप्त के लिए 1000 सागर होगी। सौ पृथक्त्व सागर और पंचेंद्रिय के लिए 1000 पंचेंद्रिय के लिए पूर्व कोटि पृथक्त्व प्लस 1000 सागर। हाँ, और पंचेंद्रिय पर्याप्त के लिए 100 पृथक्त्व 100 सागर। हाँ, यानी वहां 1000 सागर लिए, पृथक्त्व 100 सागर यानी अप टू 900 सागर उतना लेना है। हाँ, सामान्य में साधिक लेना है। और अकेले पर्याप्त में 2000 सागर। तो ये अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है। अब 48 पृष्ठ पर सेकंड लाइन, ये पंचेंद्रियों में ही देख रहे हैं हम। पंचेंद्रिय रसों में सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की भुजगार और अवस्थित स्थिति वक्तियों का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। भुजगार और अवस्थित सम्यक्त्व के पहले समय में होता है, फिर मिथ्यात्व में जाना और फिर दोबारा सम्यक्त्व प्राप्त करेगा तो अंतर्मूर्त में करेगा। और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अपनी स्थिति प्रमाण है, यानी उस स्थिति के शुरू में उसने प्राप्त किया था, फिर अंत में भी। अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य अंतर एक समय, यानी सम्यक के जब भुजगार या अवस्थित हो रहा है एक समय के लिए अल्पतर का अंतर पड़ेगा। अवक्तव्य स्थिति विभक्ति का जघन्य अंतर पल्लव के असंख्यात भाग प्रमाण है, जैसे अन्यत्र हमने घटित किया था, तथा दोनों का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अपनी स्थिति प्रमाण है। इसी प्रकार पुरुषवेदी चक्षु दर्शन वाले और संगी जीवों के जानना चाहिए, जैसे हमने पंचेंद्रिय में घटित किया है वैसे पुरुषवेदी की अपनी स्थिति। पुरुषवेदी की कितनी पृथक्त्व सौ सागर थी कि
हाँ नहीं, वो तो स्त्रीवेदी
पृथक्त्व सौ सागर, और स्त्रीवेदी में हमने पृथक्त्व सौ पल्ले देखे थे। संगी में अगर ऐसा लेना है संगी जीव, तो संगी तो पंचेंद्रिय होते हैं ना, पंचेंद्रिय में भी संगी लेना अकेले, तो संगी पंचेंद्रिय का जो हमने ये पृथक्त्व कोटि पूर्व लेते हैं और बाद में उसको नहीं, मगर वो तो तीर्यंचों में हमने देखा था। संगी में तो चारों ही गति किया जाएगी, उसको भी पृथक्त्व ही कहेंगे ना, पृथक्त्व सहसागर
पृथक्त्व ही कहा।
उसके योग्य जितने पृथक्त्व हो गए उतने ले लेना। 48 प्रश्न में सेकंड पैराग्राफ, पांचों मनोयोगी और पांचों वचन योगी जीवों में मिथ्यात्व 16 कषाय और 9-9 कषायों की भुजगार अल्पतर और अवस्थित स्थिति विभक्तियों का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है, क्योंकि योगों का ही काल अंतर्मूर्त है, उसके अंदर ले लेना। सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। अल्पतर का उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त कैसे लेना? देखो अल्पतर करते करते उद्वेलना पूरी की उसने,
अल्पतर का अंतर हो गया और वापस सम्यक तो प्राप्त,
या उद्वेलना पूरी करने की भी जरूरत नहीं है, नहीं योग पलटने के पहले ये सब होना चाहिए। योग रहते हुए अंतर घटित करना है तो योग तो हमें फिक्स रखना है।
तो
देखो उद्वेलना चल रही थी,
उद्वेलना पूरी हो गई, दूसरे
पूरे करने की जरूरत नहीं है, अल्पतर की बात चल रही ना, उद्वेलना में तो अल्पतर हो रहा था।
हाँ।
और सम्यक तो प्राप्त करते ही उसका क्या हुआ?
एक समय
हुआ, अब हमें अधिक से अधिक घटित करना है तब उद्वेलना पूरी करना। जब अल्पतर का उत्कृष्ट अंतर देखना है तो मनोयोग में आया तो उसने अल्पतर किया, उद्वेलना का अंतिम समय था, दूसरे समय में सत्ता नष्ट हो गई, यानी अल्पतर हो गया, और उसने फिर
मनोयोग
में ही रहते हुए सम्यक तो प्राप्त किया, प्राप्त किया तो अवक्त भी हुआ।
दो समय
हाँ, तो तीन करण के काल से ये अधिक होगा योग का काल, नहीं होगा अल्पभूतव में? नहीं, वही तो लगता है ना, क्योंकि उसके बिना वहां अंतर कैसे घटित होगा। अल्पतर यानी उद्वेल नाम ही अल्पतर किया, फिर उसने सम्यक तो प्राप्त करके दूसरे समय से उसका
नहीं वेदक में हो जाएगा शायद,
कोई भी
कर रहा था और वेदक सम्यक तो प्राप्त करके ज्यादा स्थिति कर ली अंतर बोलते हैं, क्योंकि ये करण का टाइम ज्यादा होगा मेरे
कल। देखो तो फिर ऐसा लेना है कैसे, किस है उससे कम कैसे हो जाएगी उसके?
नहीं उद्वेलना कर रहा था।
हाँ, उद्वेलना चल रही थी
और वेदक समय तो उसने वो योग के काल में प्राप्त कर लिया।
अच्छा, पहले जैसे अपने भुजगार और अवस्थित घटित किया था वैसे ही लेना है अल्पतर, यानी मिथ्यात्व की स्थिति कम करना सम्यक्त्व से।
तीनों की कम होगी ना, मिथ्यात्व सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व की।
नहीं, ऐसी चाहिए मिथ्यात्व की स्थिति की उसके संक्रमण से अधिक स्थिति नहीं प्राप्त होना, या तो समान ले लो या फिर अल्प ले लो मिथ्यात्व की। तो जब सम्यक्त्व, देखो ये तीन है ना, सम्यक्त्व सम्यक् मिथ्यात्व, यदि मिथ्यात्व की ज्यादा होती है तो सम्यक्त्व प्राप्ति के बाद वो टर्न होके ये अधिक हो जाएगी, हमें अल्पतर चाहिए
सम्यक्त्व की स्थिति का।
तो यहाँ अल्पतर हो रही थी, फिर भी अंतर कैसे होगा अंतर्मूर्त वाला?
नहीं होगा,
वो एक समय वाला तो घटित होगा, आपको अंतर घटित करना है तो उद्वेलना पूरी ही होनी ही चाहिए। देखो उत्कृष्ट अंतर में हमने क्या देखा था, अन्यत्र
उद्वेलना पूरी होने का कोई जरूरत ही नहीं है, वहाँ पे अल्पतर कर रहा था। अच्छा बच्चे, वो एक समय घटित हो जाएगा
अल्पतर और फिर अल्पतर, फिर अंतर ही नहीं घटित होगा। आप जो कहते हैं ना,
हाँ,
वैसा अगर करना है तो अल्पतर का लगातार काल हो जाएगा, वो हमें अल्पतर का अंतर चाहिए, अल्पतर से अल्पतर में जाएगा ऐसा आपके कहने के अनुसार अगर हम लेते हैं तो। पहले भी हाँ, वो अल्प थी मिथ्यात्व की स्थिति कम थी, और समय तो प्राप्त होने पर वो तो अल्प ही होने लगा, क्योंकि एक समय उसका भी घट गया, तो अल्पतर में से अल्पतर में ही आया, तो अंतर घटित ही नहीं हुआ। अन्यत्र जहाँ उत्कृष्ट अंतर घटित किया है ना, देखो नहीं काल देख के भी फायदा नहीं है। देखो मैं आपको यहाँ से बताया, अभी जो हमने पंचेंद्रिय का पढ़ा था, कुछ कम अपनी स्थिति प्रमाण लिया है, देखो इसी पेज पर 48 पेज पर ही पंचेंद्रियों में सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व में अल्पतर स्थिति विभक्ति का अंतर, नीचे से तीसरी लाइन पहले पैराग्राफ के या ऊपर से चौथी लाइन, अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य अंतर एक समय ये तो घटित होता है, अवक्तव्य का भी पल्ले का असंख्यात भाग, और दोनों का यानी अल्पतर का और अवक्तव्य का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अपनी स्थिति प्रमाण है। ऐसे यहाँ पर कुछ कम योग की स्थिति प्रमाण लेना है, वहां भी अल्पतर का उत्कृष्ट अंतर कैसे घटित करते हैं हम, उद्वेलना पूरी हुई फिर जाके प्राप्त किया है, और समय तो प्राप्त करते ही तो अल्पतर चालू ही हो जाता है उसका, पहले समय ही वो अवक्तव्य होगा फिर भी अवक्तव्य हो जाएगा, ऐसे ही घटित होगा। इसीलिए यहाँ अंतर्मूर्त लिया, क्योंकि योग का काल अंतर्मूर्त है। तो अरविंद भाई का जो कहना था ना, तो ये बात हो जाएगी कि तीन करण लब्धि तो मानेगा, क्योंकि औपशमिक समय तो है अवक्तव्य करेगा, तो तीनों का काल इससे भी कम है। हाँ, यथा योग्य पर मनोयोग वचन योग दोनों को ही ले लिया ना यहाँ पर, और दोनों ही घटित किया यहाँ पर। तथा शेष यहाँ फिर नीचे आते हैं मनोयोगी वाले प्रकरण में चौथी लाइन। हाँ देखो अंतर्मुख कैसे घटित हुआ, पहले जीव ये मनोयोग का काल यहाँ से यहाँ तक है, इसमें जीव आया तो उसकी सम्यक प्रकृति थी या सम्यक मिथ्यात्व था, दूसरे समय में उसकी उद्वेलना पूरी हो गई। उद्वेलना पूरी होने के बाद उसने अंतर्मुहूर्त में ही औषमिक सम्यक तो प्राप्त कर लिया, और प्राप्त होने के पहले समय में तो अवक्तव्य कहलाएगा और दूसरे समय से अल्पतर ही होता है, क्योंकि सम्यक दृष्टियों के तो अल्पतर होता ही है। तो एक बार अल्पतर हुआ फिर दोबारा अल्पतर हुआ, तो ये अंतर उसका जो है वो अंतर्मुहूर्त घटित हुआ। इसका अर्थ ये सारे करण परिणाम वगैरह वो मनोयोग के अंतर्मुहूर्त से छोटे अंतर्मुहूर्त हो जाएंगे।
अन्यथा दूसरे फिक्स रहता है ना मनोयोग और वचन योग का काल?
नहीं नहीं वो कम भी हो सकता है ना, जघन्य और उत्कृष्ट हो सकता है,
कम हो सकता है
जघन्य एक समय हो तो औदारिक का योग व्याघात की अपेक्षा से,
यानी
वो योग में आया और वो टूट गया उसका योग तो औदारिक का योग में आ जाता है या का योग में आता है, औदारिक की बात नहीं का योग में आता है। और एक समय तो ऐसा है ना आयु के अंत में किसी योग में आया है, मनोयोग में आया और एक समय में आयु पूरी हुई, तो कार्मण में चला जाएगा या मिश्र में चला जाएगा, यानी अन्य भाव की जो योग हो गए उसमें चला जाएगा। शेष स्थिति विभक्तियों का अंतर नहीं है, यानी सम्यक्त्व के बारे में शेष किसका 25 पृष्ठ वहां तो काल बता रहे कि जघन्य काल अंतर्मूर्त है, लगातार अल्पतर रहने का जघन्य काल उसका अर्थ क्या है? वहां तो क्षय कर दिया, हमें अंतर करने के लिए दोबारा वो उसका सत्ता में आना चाहिए क्या है ना? दो बार करना है तभी तो अंतर घटित होगा, और जिस मार्गणा में लेते उतनी मार्गणा से वो काल छोटा होना चाहिए। हाँ इसलिए यहाँ दूसरी बात क्या करे, शेष स्थिति विभक्तियों का, यानी सम्यक्त्व में उन्होंने अल्पतर का बता दिया है और सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व में शेष स्थिति विभक्तियों का अंतर नहीं है, इसका अर्थ क्या है? शेष कौन कौन सी हो सकती है? भुजगार हो सकती है, अवस्थित हो सकती है। तो एक बार सम्यक तो हुआ है, सम्यक तो का काल पूरा करके मिथ्यात्व में जाएगा और फिर सम्यक तो प्राप्त करेगा तब उसको भुजगार हो सकता है, इतना बड़ा योग का काल नहीं। परंतु एक समय में उद्वेलना करके सम्यक तो प्राप्त करने का इतना तो योग का काल है, ख्याल है ना? इस तरह से हम डिराइव कर सकते हैं। उसमें अवस्थित का भी अंतर नहीं होता है, अवस्थित भी एक बार सम्यक तो प्राप्त करने के पहले समय में दोबारा सम्यक तो इसमें से मिथ्यात्व में जाए, मिथ्यात्व में से फिर सम्यक तो प्राप्त करे, और वो भी उतनी कंडीशन के साथ, वो नहीं हो सकता। और कौन से रहेगी उसकी? अवक्तव्य। तो सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व के अवक्तव्य के अंतर के लिए जघन्य में जघन्य अंतर पल्ले का असंख्यात अभाव है, उतना तो एक किसी योग का हो ही नहीं सकता है, किसी योग का नहीं, मनोयोग वचन योग का। औदारिक का योग का काल बड़ा होगा परंतु उसमें अवक्तव्य वो बड़े वाले में नहीं होगा, बड़े काल में नहीं होगा, क्योंकि बड़ा काल लगातार का योग रहने का एकेंद्र में होता है, उसमें तो अवक्तव्य हो नहीं सकता। देखो ये हम एक अपेक्षा लेते तो दूसरी कहीं छूट जाती है अपनी, तो अभी हाँ 20 प्ररूपणा भी हम आपस में लगाते थे ना, एक को पकड़ो तो दूसरा जाते हैं मार्गणा भी यही बात होती है, एक को पकड़ो तो दूसरा कहीं छूट जाता है, ऐसा अच्छा है ना, हम सब साथ में बैठते तो कोई भूल जाएगा तो दूसरा याद दिलाते हैं उसको। इसी प्रकार जैसे पांच मनोयोगी पांच वचन योगी में देखा है, इसी प्रकार औदारिक का योगी, वैक्रियक का योगी और चार कषाय वाले जीवों के जानना चाहिए, यानी जो उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त वगैरह होता है, औदारिक का योगी में भी उतने काल में जितना हो सकेगा उतनी बात ली है। क्योंकि कौन से औदारिक का योगी लेना है, ये पंचेंद्रिय वाले लेना है। भुजगार का तो उत्कृष्ट अंतर अंतर मूर्त कैसे घटित होगा? औदारिक का योगी मार्गणा में भुजगार मिथ्यात्व का भुजगार का उत्कृष्ट अंतर, भुजगार कब हो, मिथ्यात्व में भुजगार कब होता है? अधिक अधिक बंद करेगा तब भुजकार हुआ ना, तो उसके बाद मान लेते हैं अंतर्मूर्त तक वो भुजकार रहा, ये अल्प अवस्थित रहा, और बाद में फिर भुजकार कर सकता है तो उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त हो जाएगा। परंतु वो तो जघन्य हो सकता है ना, वो उसको जघन्य रहने का काल लेना उसमें। ओग में देखो, ओग में भुजगार का उत्कृष्ट काल कितना है? अंतर अंतर सब जगह अंतर्मूर्त ही है, पंचेंद्रियों में भी देखा था उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। देखो यहाँ ओग में जब हम कहते हैं भुजगार का अंतर, यहाँ क्या कहना चाहते हैं, औदारिक का योग किस में होता है? पंचेंद्रियों में भी होगा, एक इंद्रियों में भी होगा। तो एक बार जिसने अधिक बंद से कम बंद किया है और दोबारा कम ही बंद होना उसका, लगातार कम बंद होता रहे तो अंतर्मूर्त तक ही हो सकता है। परंतु जब हमने ओग में भुजगार का अंतर घटित किया था तो अल्प केवल अल्प बंद की अपेक्षा नहीं है, तो उसने बीच में सम्यक तो प्राप्त किया, और ऐसे भोग भूमि में या ऊपर के देव में चला गया कि जहां अल्पतर ही अल्पतर होता रहता है, इसलिए उसके लिए भुजगार का उत्कृष्ट अंतर 163 सागर देखा था। यहां कौन सी बात चल रही है? औदारिक काय योगी है, तो औदारिक काय योगी में वो एकेंद्रीय हो या पंचेंद्रीय हो, एक बार उसने भुजगार का अंतर किया ने उत्कृष्ट में से वो जघन्य बंद करने लगा तो अंतर्मूर्त तक ही होगा, उसके बाद फिर बढ़कर बंद होगा, इसलिए यहाँ अंतर्मूर्त घटित किया।
हमने भुजगार का अंतर एक समय भी देखा है,
एक समय तो मिनिमम, उसके बारे में कोई डिस्प्यूट नहीं है। हाँ। उत्कृष्ट अंतर लेना, तो उत्कृष्ट अंतर कितना पड़ेगा उसकी बात है।
पर एक इंद्रिय में जो जीव है भुजागर का, जो आप एक बार भुजागर किया और पीछे वो अल्पतर ही करता चला गया तो उसमें तो वो ज्यादा घटित हो जाएगा ना।
कहाँ पर?
औदारिक कायोग भी हम लोग
औदारिक कायोगियों में एक इंद्रिय में अगर घटित करना है, ऐसी बात है ना। देखो एक इंद्रिय की मार्गणा निकालो, परंतु एकेंद्रियों में लगातार एकेंद्रियों में रहने का काल लेते हैं हम, वो भी नहीं चलेगा। औदारिक कायोग तो चेंज हो जाएगा, बीच में मिश्र भी आ जाएगा, परंतु औदारिक कायोग भी आपकी कहने से 22,000 वर्ष में कुछ कम इतना तो रहेगा, है ना? तो उसमें देखते हैं आदेश में हम एक इंद्रियों की बात कहाँ ली, कि अभी गए नहीं आगे, योग में ही आ गए डायरेक्ट, इंद्रिय मार्गणा नहीं लिया उसको। देखो ये बात उन्होंने 46 पृष्ठ पर पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों में ली है, और उसी में इसी समान इसी प्रकार जानना ये बात वहां पढ़ेंगे 82 नंबर का पॉइंट। देखो पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों में मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषायों की भुजगार अल्पतर और अवस्थित स्थिति विभक्ति का जघन्य अंतर एक समय, और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। यहाँ भी उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त लिया ना,
यहाँ तो काली अंतर्मूर्त है, अपर्याप्त तो
अपर्याप्त का काल अंतर्मूर्त है, ठीक है।
औदारिक कायोग का काल तो लंबा हो जाएगा 22,000 वाला,
वो अपर्याप्त के बदले उसी प्रकार, वो तो हमें किसी प्रकार, वो नीचे देखो मनुष्य अपर्याप्त एकेंद्रिय बादर एकेंद्रिय और बादर सूक्ष्म के पर्याप्त अपर्याप्त लिए। उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त ही लिखा है भुजगार का, हाँ? नहीं नहीं अपर्याप्त का एकेंद्रिय भी लिए है, बादर एकेंद्रिय भी लिए है, चौथी लाइन इसी प्रकार। ये क्या है कथन, उसको पहले पढ़ा हमने, और यही बात यही रूल यही कथन एकेंद्रियों में भी होगा, बादर एकेंद्रियों में भी होगा, इसलिए औदारिक कायोग में भी ये घटित होगा। भुजगार का अंतर
पृथ्वी का एक बादर में जो गया है,
पृथ्वी का एक बादर में गया है,
उसने पहले एक बार भुजगार किया तो वापस वो भुजगार अंतर्मुख में करेगा, ऐसा ही घटित हो जाता है।
पहले में पहले ये सोचो कि वो भुजगार कब करेगा,
अत समुत्पत्ति करके आया है,
हाँ, अत समुत्पत्ति करके आया
है,
बराबर है। अत समुत्पत्ति कहने याद है,
जिससे एकेंद्रिय
मान लेते पंचेंद्रिय में से आए तो पहले तो उसकी स्थिति घटती चली जाएगी, यानी अल्पतर ही होता रहेगा, फिर अल्पतर के बाद उसने भुजगार किया यानी एकेंद्रिय के योग्य अधिक बंद किया, तो अधिक बंद किया तो एक समय के लिए अधिक बंद कर सकता है, फिर कम करेगा, वो तो यानी अल्पतर का अंतर कहलाएगा। भुजगार का अंतर कहना है तो एक समय के लिए भुजगार किया, बाद में मान लेते अवस्थित किया उसने अंतर मुहूर्त तक, बाद में फिर दोबारा भुजगार भी करेगा या अल्पतर भी किया तो अल्पतर भी अंतर्मूर्त तक करेगा, यानी आपका कहना है लगातार अल्पतर ही करता जाए ऐसा अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं बनेगा।
जो अत समुत्पत्ति कर रहा है,
हाँ कर रहा है, उसके लिए भी
उसका भुजगार पहले घटित ही नहीं
होगा, भुजगार तो अंतर घटित करना है ना, एक बार तो भुजगार कराना ही है, बाद में फिर दोबारा भुजगार करना है, अंतर्मूर्त होगा। अब 48 पृष्ठ पर आते हैं, फिर नीचे से दूसरा पैराग्राफ कहाँ योगियों में, अब यहाँ उदारिक या वैकिरिक ऐसा कुछ नहीं, कहाँ योग इतना ही कह दिया है, कहाँ योगियों में मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषायों की भुजगार और अवस्थित स्थिति विभक्तियों का जघन्य अंतर एक समय, और उत्कृष्ट अंतर पल्योपम के असंख्यात्व भाग प्रमाण है। अब काय योगी इतना ही लिया है, उत्कृष्ट अंतर कैसे लेना भुजगार में, अन्यथा तो अंतर्मूर्त घटित होता है, तो ये भुजगार ने संगी पंचेंद्रिय में भुजगार किया उसने, जो है उससे अधिक बंद किया। हम देखते हैं ना कोई देव है, अंतिम समय में उसने 70 कोड़ा कोड़ी का किया, उसके पहले कम था, और दूसरे समय में मरकर एकेंद्रिय में गया, तो एकेंद्रिय में पल्ले के असंख्यात भाग तक लगातार अल्पतर होता रहेगा। कायोग से कायोग में आया है, भले वैकिरिक कायोग में से यहाँ कहीं भी ले लो, कारमान ले लो, मिश्र ले लो, कायोग तो चला है उसका, बाद में भी औदारिक कायोग हो जाएगा, फिर भी कायोग चालू है। हाँ, औदारिक मिश्र भी कायोगी है ना, तो लगातार उसका अल्पतर होता गया, और जब उसको हत समुत्पत्तिक हो जाएगा मिनिमम पॉसिबल, तो उसको फिर भुजगार होगा। तो पहले देव में भुजगार किया था, अब पल्ले के असंख्यात भाग बाद उसके बाद
एक इंद्रिय में ही रहा,
फिर भुजगार किया, तो उसके लिए पल्ले का असंख्यात भाग लगा। यही बात 16 कषाय 9 कषाय में भी ले लेना है। अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। जैसे भुजगार के लिए हम देखते हैं ना, पहले हमने अंतर्मूर्त घटित किया था, तो अल्पतर के लिए भी अंतर्मूर्त घटित होता है। अनंतानुबंधी चतुष्क की अवक्तव्य स्थिति विभक्ति का अंतर नहीं है, ऐसा क्यों कहा?
देखो,
हाँ, अनंतानुबंधी की अवक्तव्य किसके होती है? हाँ जयाबेन, जिसने पहले विसंयोजना की थी और अभी मिथ्यात्व में आते ही उसके संयोजना हुए, यानी वो संगी पंचेंद्रिय जीव है। बराबर, अभी औदारिक या कोई भी कायोग होते हुए, कायोग है ना, अभी ये पर्याप्त है, तो उसके औदारिक या वैकृत कायोग होगा, तभी मिथ्यात्व में आया है वो, तो तभी उसको अवक्तव्य कहा। तो उसके संगी पंचेंद्रिय, उसके तो तीनों ही योग पलटते जाएंगे, तो उसके अंतर्मूर्त काल है, तो उतने औदारिक कायोग रहते हुए दोबारा सम्यक तो प्राप्त, यानी अभी मिथ्यात्व में है वो, सम्यक तो प्राप्त करना, फिर विसंयोजन करना, फिर मिथ्यात्व में आना, इसका काल बड़ा है। फिर दोबारा औदारिक कायोग होते हुए दोबारा अवक्तव्य नहीं होगा।
हमने आगे अल्पतर में घटित किया कि क्या वो अंतर्मूर्त में हो जाते हैं, औदारिक कायोग के अंतर्मूर्त में, नहीं मनोयोग और वचन योग में, पर यहाँ पे ये वापस अवक्तव्य।
मनोयोग में भी हमने अवक्तव्य का अंतर नहीं देखा था,
अल्पतर का अंतर देखा था।
हाँ, अल्पतर का देखा था। ये बात ख्याल में आई? देखो, अनंतानुबंधी का अवक्तव्य कब होता है? अनंतानुबंधी सत्ता में नहीं थी, अब हो गए, तो सत्ता में नहीं थी यानी विषयोजन वाला सम्यक दृष्टि था, यानी संगी पंचेंद्रिय है, अब वो मिथ्यात्व में आते ही उसके अवक्तव्य हुआ, उस समय उसका काय योग चल रहा है, तीन योग है ना उसके, मनोयोग, वचन योग और काय योग, और वो अंतर्मूर्त में पलटते हैं। अब यह काय योग में आते ही उसके अवक्तव्य चालू हो गया, अभी अवक्तव्य में से उसको फिर, यानी वो भी मिथ्यात्व में अंतर्मूर्त तो रहेगा, तब जाके सम्यक तो प्राप्त करेगा, और वो सम्यक तो में रहकर फिर अनंतानुबंधी की विसंयोजना करेगा अंतर्मूर्त में, और फिर वो मिथ्यात्व में आएगा। तो ये जो काल है वो योग के काल से बड़ा है, योग पलट जाएगा बाय दैट टाइम। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की भुजगार अवस्थित और अवक्तव्य स्थिति विभक्ति का अंतर नहीं है। कायोग के रहते हुए ये भुजगार तो पहले समय में होते सम्यक्त्व का, फिर सम्यक्त्व में से मिथ्यात्व में आए, मिथ्यात्व में से सम्यक्त्व प्राप्त करे, तो इतना बड़ा काल नहीं है वो। अवक्तव्य के लिए तो पल्ले का असंख्यात भाग लगता है, वो भी नहीं हो सकता। अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व के अल्पतर के लिए, क्योंकि एक समय के लिए भुजकार देखा था, तो फिर अल्पतर हो जाता है, और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त में हमने देखा था, उद्वेलना पूरी की और अंतर्मूर्त में उसने सम्यक्त्व प्राप्त करके फिर अल्पतर चालू किया। कार्मण का योगियों में 26 प्रकृतियों की भुजगार अल्पतर और अवस्थित स्थिति भक्तियों का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर एक समय है।
कार्मण का युग में तो एक इंद्रिय में
घटित होगा ना। हाँ, कार्मण का युग जो है तो भुजगार का अंतर
वो तो एक इंद्रिय
कितना होगा, एक इंद्रिय में, क्योंकि पहले जितना है फिर अल्प किया और फिर भुजगार किया, तो जहाँ तीन समय होते हैं वहाँ एक समय का अंतर घटित हो सकता है, तो वो भी भुजगार अल्पतर और अवस्थित का ही देखा, शेष का अंतर नहीं है। इसी प्रकार अनाहारकों के जानना चाहिए। अब 48 पृष्ठ पर ही नीचे का पैराग्राफ कौन से, कार्मण का योग एक इंद्रियों में तीन समय घटित होते हैं। यहाँ दो समय है, वहां कैसे होगा, मान लेते पहले समय में भुजगार हुआ है, दूसरे समय में अल्पतर होगा, फिर दोबारा भुजगार होने के लिए तीसरा समय चाहिए, वो वहां नहीं है। ख्याल में आई बात? हाँ, वहीं पर ये घटित होगा। तीन मोड़ तक यानी तीन समय तक ही कार्मण का योग रह सकता है, उसमें घटित होगा। एक इंद्रिय की जरूरत नहीं, कहीं पंच इंद्रिय में से पंच इंद्रिय में ले लो, हाँ, मगर पंच इंद्रिय में दो मोड़ हो गए, वहां नहीं घटित होगा। एक इंद्रिय में से, हाँ, एक इंद्रिय में से एक इंद्रिय में, उसमें भी सूक्ष्म एक इंद्रिय हमने पहले पढ़ा था, सूक्ष्म एक इंद्रिय में घटित होता है। तीन मोड़ सबके नहीं होते, परंतु किसके होते तो एक इंद्रिय में ही होते हैं, एक इंद्रिय भी रुजुगति से जा सकते हैं। अब स्त्री वेदी, वेद मार्गणा में देख रहे भी हम, स्त्री वेदियों में मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषायों की, भुजगार और अवस्थित स्थिति भक्तियों का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 55 पल्य है। ये तो हमने पहले भी देखा था, है अल्पतर स्थिति भक्ति का अंतर ओग के समान है, किंतु इतनी विशेषता है कि अनंतानुबंधी चतुष्क की अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य अंतर एक समय, अल्पतर का अंतर ने एक समय के लिए भुजगार किया तो अल्पतर का अंतर होगा, और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 55 पल्य है, यानी उसने अल्पतर का अंतर चाहिए ना,
विसंयोजना कर दी और वापस,
हाँ, विसंयोजना कर दी अनंतानुबंधी की, तो सत्ता में ही नहीं था, फिर जाके अंत में अल्पतर करना है उसको, फिर संयोजना की
वापस सम्यक तो प्राप्त किया
और सम्यक तो प्राप्त किया, हाँ, तो अल्पतर चालू हो जाएगा। अवक्तव्य स्थिति विभक्ति का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त, अनंतानुबंधी में अवक्तव्य ने दो बार उसने विसंयोजना से संयोजना की तो दो बार अवक्तव्य का अंतर हो जाएगा, और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अपनी स्थिति प्रमाण है।
यहाँ पे पृथक्त्व 100 पल्य रह सकते
हैं, पृथक्त्व 100 पल्य बरोबर, अपनी स्थिति ने श्रीवेद की अपनी स्थिति, सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की, भुजगार और अवस्थित स्थिति भक्तियों का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त, मैंने दो बार सम्यक्त्व प्राप्त किया, पहले समय में होता है ना भुजगार, अल्पतर स्थिति भक्ति का जघन्य अंतर एक समय, क्योंकि वो उद्वेलना कर रहा था, एक समय के लिए भुजगार हुआ और फिर सम्यक्त्व प्राप्त करने के बाद फिर अल्पतर हो गया, तो अल्पतर का जघन्य अंतर एक समय, और अवक्तव्य स्थिति विभक्ति का जघन्य अंतर पल्यपम के असंख्यात्वे भाग प्रमाण है, तथा सभी का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अपनी स्थिति प्रमाण है। ये अपनी स्थिति में त्रिवेदी की अपनी स्थिति पृथक्त्व सौ पल्ल है और पुरुष वेदी में पृथक्त्व सौ सागर है। नपुसक वेदियों में मिथ्यात्व सोलह कषाय और नौ नौ कषायों की भुजगार और अवस्थित स्थिति भक्तियों का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम तैतीस सागर है। यानी उसने भुजगार के बाद वो लगातार अल्पतर यानी समय तो प्राप्त किया, लगातार अल्पतर होता रहा और बाद में जाकर फिर भुजगार किया। ख्याल में
सातवें
नरक वही लेना है ना, क्योंकि सम्यक तो में से लास्ट में मिथ्या तो में आएगा। भले पहले कम स्थिति बांध सकता है, पर अधिक स्थिति बांधने वाला जब वो अधिक स्थिति बांधेगा तब उसका भुजगार कहलाएगा। कम से अधिक होगा तब भुजगार कहलाएगा। तो शुरू में उसने अधिक स्थिति बांधी थी, बाद में सम्यक तो प्राप्त किया तो लगातार अल्पतर होती रही, अंत में मिथ्या तो में गया और जब अधिक स्थिति बांधी तब फिर भुजगार हुआ। अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य अंतर एक समय, यानी एक समय के लिए उसने भुजगार किया और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है, यानी अंतर्मूर्त तक उतना ही लगातार उतना ही बंद किया अवस्थित। किंतु इतनी विशेषता है कि अनंतानुबंधी चतुष्क की अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य अंतर एक समय, जब सभी कषायों में अल्पतर का अंतर घटित करते हैं तो अलग बात है, यहाँ अल्पतर में तो उसकी सत्ता ही नाश हो सकती है। और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम तैतीस सागर है। अल्पतर का जघन्य अंतर एक समय जब कहते हैं तो एक समय के लिए उत्कृष्ट अधिक बंद होगा तो जघन्य अंतर कहलाएगा, और उत्कृष्ट अंतर घटित करने के लिए विषय योजना कराना कुछ कम तैतीस सागर है। यानी उसने पहले सम्यक तो प्राप्त किया है, वहां जाके विसंयोजना की तो विसंयोजना के अंतिम समय में उसका अल्पतर घटित हुआ, सत्ता में से नाश हुआ, फिर जाके संयोजना हुई और फिर उसके बाद फिर कम बंद किया, उसने कम बंद किया तो अल्पतर हो गया। अवक्तव्य स्थिति विभक्ति का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। ये नपुसक वेदियों में तो अर्धपुद्गल परिवर्तन घटित होता है, एकेंद्रिय में रहने का काल है। और स्त्री वेदियों में हमने देखा था अपनी स्थिति प्रमाण कहा था, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का भंग ओह के समान है। इसी प्रकार असंयत जीवों के जानना चाहिए। असंयतों में भी मिथ्या दृष्टि समय दृष्टि एकेंद्रिय वो सब घटित होते हैं, तो वहां भी ये घटित होगा। मत्य ज्ञानी और श्रुता ज्ञानी जीवों में मिथ्यात्व सोलह कषाय और नौ नौ कषायों की भुजगार और अवस्थित स्थिति विभक्तियों का जघन्य अंतर एक समय। अभी मिथ्या दृष्टि इतनी बात है, किसी गति की किसी इंद्रिय वाले की बात नहीं की। और उत्कृष्ट अंतर साधिक इकतीस सागर है। भुजगार का हमेशा तो देखो क्यों साधिक इकतीस सागर
तो अल्पतर ही करेगा उसके पहले,
हाँ, वहां तो अल्पतर जाने के पहले उसने भुजगार किया था यहाँ पर,
और उसके पश्चात
फिर उसके बाद उस यथा योग्य वहां उत्पन्न हुआ है और वहां से आने के बाद यहाँ फिर भुजगार करेगा तब तो उसका उत्कृष्ट अंतर होगा साधिक इकतीस सागर। अल्पतर स्थिति विभक्ति का अंतर ओघ के समान है। अल्प का अंतर कैसे होगा? एक समय के लिए भुजगार किया या अधिक से अधिक लगातार अंतर मुहूर्त तक किया? सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर स्थिति विभक्ति का अंतर नहीं है। क्या उनके अल्पतर स्थिति विभक्ति नहीं है? है, क्योंकि उद्वेलना है। परंतु अंतर तभी घटित होगा ना कि जब उसी हाँ सम्यक तो प्राप्त नहीं करेगा, यह मत्य ज्ञानी है, इसलिए अंतर नहीं है। इसी प्रकार मिथ्या दृष्टियों के जानना चाहिए कि ज्ञान मार्गणा की अपेक्षा मत्य ज्ञानी कहा और सम्यक तो मार्गणा की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि कहा। अभव्यों में 26 प्रकृतियों का इसी प्रकार जानना चाहिए। अब लेशा मार्गणा में कहेंगे, कृष्ण नील और कापोत लेशा में मिथ्यात्व 12 कषाय और 9 कषायों की भुजगार और अवस्थित स्थिति विभक्तियों का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अपनी स्थिति प्रमाण है। क्योंकि हम देखते हैं नरकों में तो एक एक लेशा लंबे अपनी आयु प्रमाण रहती है, तो वहाँ अपनी स्थिति प्रमाण, नरक में जाने के पहले अंतर्मूर्त वही लेशा है, वहां से आने पर भी अंतर्मूर्त। अल्पतर स्थिति विभक्ति का ओघ के समान है, उसका अंतर एक समय और अंतर्मूर्त होगा। अनंतानुबंधी चतुष्क की भुजगार और अवस्थित स्थिति विभक्तियों का जघन्य अंतर एक समय, अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य अंतर एक समय और अवक्तव्य स्थिति विभक्ति का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। अवक्तव्य ने विसंयोजना के बाद फिर संयोजना करता है, तब की बात है। तथा सभी का यानी अनंतानुबंधी के भुजगार का, अवस्थित का और अल्पतर और अवक्तव्य का सभी का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है। ये जो जो लेशा का जो वहाँ काल है उससे कुछ कम लेना। सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की भुजगार और अवस्थित स्थिति विभक्तियों का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त, जैसे हमेशा घटित करते हम। अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य अंतर एक समय, किसकी? सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर का अंतर, यानी अल्पतर चल रही थी उद्वेलना में, एक समय के लिए भुजगार या अवस्थित किया, सम्यक्त्व प्राप्त होने पर फिर अल्पतर किया, तो अंतर अंतर्मूर्त, सॉरी एक समय। और अवक्तव्य स्थिति विभक्ति का जघन्य अंतर पल्ल्योपम के असंख्यात्वे भाग प्रमाण है। हाँ, एक बार उद्वेलना हुई है और फिर उसने सम्यक तो प्राप्त किया, फिर दोबारा उद्वेलना करके फिर सम्यक तो प्राप्त कराना है, तो दो उपशम सम्यक के बीच वाला अंतर। तथा सभी का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है। ये लेशाओं की स्थिति नरकों में वगैरह लेना है, क्योंकि यहाँ अगर मनुष्य तिरियंचों में तो अंतर्मूर्त में पलटती है, वहां ये घटित नहीं होगा। पीतलेशा में सौधर्म के समान भंग है, पद्मलेशा में सहस्रार के समान भंग है, असंगियों में एकेंद्रियों के समान भंग है। इतनी विशेषता है कि 26 प्रकृतियों की भुजगार और अवस्थित स्थिति विभक्तियों का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर पल्ल्योपम के असंख्यात्वे भाग प्रमाण है। क्योंकि उसके जो स्थिति घटती है हाँ, तो समुत्पत्ति होने के लिए उतना काल लगेगा। आहारकों के ओघ के समान है। इतनी विशेषता है जहाँ उपार्द पुद्गल परिवर्तन प्रमाण अंतर कहा है, ओघ में कितना कहा अंतर? कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन, तो आहार लगातार रहने का काल कितना है?
अंगुल का संख्या,
अंगुल की असंख्या तो विभाग प्रमाण अंतर। अब याद किया था ना उसको, जो कितना काल है तो असंख्यात असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी जितना काल है। इस प्रकार अंतरानुगम समाप्त हुआ। हर्ष नाना जीवे ही भंग विचयो। अब नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचयानुगम का अधिकार है। यह सूत्र सुगम है क्योंकि इसका फल अधिकार की संभाल करना है। संत कम्मीयेषु पयदम, सत्कर्म वाले जीवों का प्रकरण है। फिर शंका, सत्कर्म वाले जीवों में ही इस अधिकार की प्रवृत्ति क्यों होती है? उसका समाधान, क्योंकि जिन जीवों के मोहनीय कर्म की सत्ता नहीं है उनमें भुजगार आदि पदों का पाया जाना जाना करना संभव नहीं है। जिसमें प्रकृति नहीं है तो भुजगार है कि अल्पतर है वो सवाल ही कहाँ आता है। एदेसिम कम्मान ऊपर है ना, सौवे जीवा मिच्छत्त सोलकसाय नवनोकसायाणम भुजगार ठिदि विहत्या च अपदर ठिदि विहत्या च अवठिदर ठिदि विहत्या च। पहले में पहले सत्ता किस किस की है उसकी बात बताते। संत कम पता है ना, मिथ्यात्व सोलकषाय और नौनोकषायों की भुजगार स्थिति विभक्ति वाले, अल्पतर स्थिति विभक्ति वाले और अवस्थित स्थिति विभक्ति वाले जी सब जीव नियम से है, यानी उन नाना जीवों की अपेक्षा बात हो रही है। तो मिथ्यात्व की कम से अधिक बांधने वाले भी है, अल्पतर करने वाले हमने देखे है ना, भोग भूमि वाले भी है, ऊपर के स्वर्गों के भी है और अन्यत्र नीचे भी सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद भी है, यानी वो तो जीव हमेशा रहेंगे। तो अल्पतर वाले भी हमेशा ही रहेंगे, अवस्थित वाले भी होंगे। इन पूर्वोक्त कर्मों की भुजगार अल्पतर और अवस्थित स्थिति भक्ति वाले जो सब जीव है वे नियम से है ऐसा यहाँ संबंध करना चाहिए। अनंतानुबंधिनम अवक्तव्यम भजितव्यम, अनंतानुबंधी चतुष्क का अवक्तव्य पद भजनीय है। भजनीय ऑप्शनल है, यानी कोई जीव होगा भी नहीं होगा भी, क्योंकि अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना करने वाले सम्यक दृष्टि जीवों का मिथ्यात्व गुण के साथ निरंतर परिणाम नहीं पाया जाता। यानी जैसे मिथ्यात्व सोलह कषाय वगैरह उसमें ये सारी बातें निरंतर पाई जाती है, ऐसे वो इसमें अवक्तव्य भंग नहीं पाए जाए। अब यही रुकते हैं। अभी जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो। मयंक भाई।